76 सेनापति कारायण। बंदीगृह में जाकर राजकुमार विदुढभ ने कहा, सेनापति तुम स्वतंत्र हो, बाहर जाओ। बंदीगृह के अंधकार में कारायण ने विदुढभ को नहीं पहचाना। उसने कहा, ये किसने मुझे उपकृत किया भंते?
मैं विदुढभ हूं मित्र।
राजकुमार, मैं आपका किस प्रकार आभार मानूं?
पहले इस कलुषित स्थान से बाहर आओ मित्र, और बातें पीछे होंगी।
परंतु मैं बेड़ियों के बोझ से चल नहीं सकता।
विदुढभ ने उसे उठाकर कंधे पर बैठा लिया। बाहर आकर उन्होंने कहा, यहां एकांत में क्षण भर ठहरो सेनापति, मेरा एक मित्र लोहार निकट ही है, मैं उसे लाकर अभी बेड़ियां कटवाता हूं।
विदुढभ चले गए। लोहार ने आकर बेड़ियां काट दी। कारायण ने मुक्त होकर राजकुमार को अभिवादन करके कहा, मैं राजकुमार का अनुगत सेवक हूं।
क्या आभार भाराक्रांत?
नहीं भंते, पहले ही से।
परंतु मित्र, तुम स्वतंत्र हो, कोई बंधन नहीं है।
मैं आपका अनुगत सेवक हूं कुमार।
तो ये तलवार ग्रहण करो मित्र, मैं तुम्हें कौशल सैन्य का प्रधान सेनापति नियत करता हूं।
क्या मैं आपको देव कौशलपति कहकर हर्षित हूं?
यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो यही सही मित्र।
तो देव कौशलपति, आपकी क्या आज्ञा है?
सेनापति, तुम अभी नगर को अधिकृत कर अपने प्रहरी और चौकियां बैठा दो।
जो आज्ञा देव।
और भी?
हाँ, 200 अश्वारोही लेकर आज सूर्यास्त के समय नगर द्वार पर स्वयं उपस्थित रहो।
महाराज प्रसेनजीत आज जैतवन में श्रमण गौतम के दर्शन करने को जाएंगे। उन्हें जाने में बाधा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जब वे लौटें तो दक्षिण द्वार पर उनका अवरोध करो, उन्हें बंदी कर लो और एकाकी पूर्वी सीमांत पर छोड़ाओ। उनके अंगरक्षक विरोध करें तो उन्हें काट डालो। सहायक सेना निकट ही रखो, परंतु सब काम अत्यंत चुपचाप होना चाहिए।
बहुत अच्छा महाराज, ऐसा ही होगा।
एक बात और, महिषी मल्लिका भी महाराज के साथ होंगी। उनसे राजमहालय में आने का अनुरोध करना तथा महाराज को सीमांत पर पाथेय देना।
ऐसा ही होगा महाराज। और कुछ?
हाँ सेनापति, गुप्तचरों से पता लगा है, बंधुल मल्ल सीमांत से आ रहा है, उसे प्रत्येक मूल्य पर रोको, यदि मारना भी पड़े तो मार डालो।
बंधुल मेरा आत्मी है, परंतु मेरे संपूर्ण उत्पीड़न का मूल है, मैं उसका शिरच्छेद करूंगा, आप निश्चिंत रहें महाराज।
तो जाओ सेनापति, बंधुल का आवास तुम्हारे लिए प्रस्तुत है, वहां तुम्हारे परिजन भी पहुंच गए हैं, विश्राम करो, अभी तुम्हारे पास यथेष्ट समय है। सावधान रहो और प्रत्येक प्रगति से मुझे सूचित करो।
77 प्रसेनजीत का निष्कासन। जैतवन से महाराज प्रसेनजीत ने लौटकर देखा, नगर द्वार पर भारी अवरोध उपरोध उपस्थित है। सेनापति कारायण नग्न खड्ग लेकर राजा के सम्मुख आए। राजा ने उन्हें देखकर कहा,
ये क्या बात है कारायण? मैंने तुम्हें बंदी किया था, किसने तुम्हें मुक्त किया?
कौशल के अधिपति ने।
कौशल का अधिपति मैं हूं, मैंने तुझे मुक्त नहीं किया।
राजा ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके कहा,
आप जैसा समझें।
तेरी यहां उपस्थिति का क्या कारण है?
मैं आपको बंदी करने के निमित्त यहां उपस्थित हूं।
किसकी आज्ञा से?
कौशल के अधिपति महाराज विदुढभ की आज्ञा से।
तेरा इतना साहस, वंचक कुटिल, मैं अभी तेरा शिरच्छेद करूंगा।
राजा ने खड्ग कोश से खींच लिया।
तो महाराज प्रसेनजीत, आप यदि इसी समय मृत्यु को वरण किया चाहते हैं तो आपकी इच्छा, आइए इधर।
कारायण ने मैदान की ओर खड्ग से संकेत किया।
राजा ने क्रोध से कांपते हुए सैनिकों को आज्ञा दी, सैनिकों, इस वंचक को बंदी करो।
किंतु सब सैनिक चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो गए। ये देखकर राजा का हृदय भय से दहल उठा। वो कांपते हुए हाथों में खड्ग लिए काष्ठ प्रतिमा के समान खड़े रह गए।
कारायण ने हंसकर कहा, महाराज प्रसेनजीत, विरोध प्रदर्शन से कोई लाभ नहीं, चुपचाप महाराज विदुढभ की आज्ञा शिरोधार्य कीजिए।
कैसी भाग्य विडंबना है, क्या मैं नगर में नहीं जा सकता?
नहीं, तेरे महाराज उस दासी पुत्र की क्या आज्ञा है रे?
यही कि यदि आप चुपचाप बंदी होना स्वीकार कर लें तो आपको प्राणदान दे दिया जाए,
और यदि मैं न स्वीकार करूं?
तो महाराज की आज्ञा है कि आपका वध करके, आपके शरीर के चार टुकड़े करके नगर की चारों दिशाओं में बलिपिंड की भांति फेंक दिए जाए।
राजा की आंखों में आंसू ढलकने लगे। उन्होंने हाथ का खड्ग पृथ्वी पर फेंक दिया, कंठ की मौक्तिक माला तोड़कर उसके दाने धूल में बिखेर दिए, सिर का उष्णीष टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया, फिर कहा, तो धृष्ट भाकुटिक सेनापति, तू अपने वृद्ध असहाय राजा से जैसा व्यवहार करना चाहता है कर। तो महाराज प्रसेनजीत, आप अपने सेवकों सहित आगे बढ़कर मेरे इन सैनिकों के बीच में आ जाएं। महाराज चुपचाप सैनिकों के मध्य में जा खड़े हुए। देवी मल्लिका भी चुपचाप राजा के साथ जा खड़ी हुई। अनुगमन करती हुई दासियों को निवारण करते हुए उन्होंने कहा, हज्जे, ऐसा ही काल उपस्थित हुआ है, तुम महालय में लौट जाओ और अपने राजा की सेवा करो, मुझे तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रही। इतना कहकर उन्होंने अपने सब रत्न आभूषण उन्हें बांट दिए। दासियां खड़ी हो रोने लगीं। कारायण ने आगे बढ़कर कहा, पट्टराज महिषी के चरणों में महाराज विदुडभ ने ये निवेदन किया है कि वे महालय में पधारकर अपने अनुगत पुत्र को आप्यायित करें। पुत्र विदुडभ ने ये अपने योग्य ही कहा, भंते सेनापति, पर मुझे अपना कर्तव्य विदित है, जहां महाराज वहां मैं। पुत्र विदुडभ से कहना, वो कौशल के यशस्वी आर्य कुल की मर्यादा की रक्षा करें। मैं आशीर्वाद देती हूं, वो यशस्वी हो, वर्चस्वी हो, चिरंजीवी हो। राजा ने भी अपने आभरण सेवकों के ऊपर फेंकते हुए कहा, भणे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम राजसेवक हो, तुमने राजा की सेवा जीवन भर की, अब ये प्रसेनजीत राजा नहीं रहा तो उसका सेवकों से क्या काम, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ राजा की सेवा करो। फिर उन्होंने कारायण की ओर मुंह करके कहा, तो भाकुटिक सेनापति, अब विलंब क्यों, तू राजाज्ञा का पालन कर। तो फिर ऐसा ही हो। उसने सैनिकों को संकेत किया और वे राजा रानी के अश्वों को घेर कर चल दिए। दास दासी खड़े रोते रहे। उस समय प्रतीची दिशा मांग में सिंदूर भरे, कौसुम्बिक चीनांशुक पहने वधुटी सी प्रतीत हो रही थी। सूर्यकुल प्रदीप महाराज प्रसेनजीत, मागध विजयी, पांच महाराज्यों के अधिपति, अर्धशताब्दी तक लोकोत्तर वैभव भोग कर आज दिनांत में राज्यश्री भ्रष्ट हो अपने ही सेवकों द्वारा बंदी होकर अदृष्ट विविध और नियतिवश अज्ञात दिशा को चले जा रहे थे। 78 बंधुल का दांव पेच। सीमांत पर बंधुल भारी उलझनों में फंस गया। वत्स सैन्य ने सीमांत के निकट ही स्कंधावार स्थापित करके धानवन वन संकट पंक विषम निहार आदि सत्र स्थापित किए थे और वो सैन्य छिपकर इन स्थलों पर गति करती थी। इससे ये स्पष्ट कूट युद्ध हो रहा था। शत्रु बंधुल को दूष्य सेना तथा आटविक के द्वारा बार बार थका डाल रहे थे। वे अवसर पाते ही धावा मारकर सीमांत का उल्लंघन कर गाय पशु और खाद्य सामग्री लूट जाते या नष्ट कर जाते थे। कौशल के जो वीर प्रतिकार के लिए उधर जाते थे, उन्हें सत्रों में छिपकर मार डालते थे। बहुधा वे रात्रि में छापा मारते, लूटपाट करते या आग लगाकर भाग जाते। इससे कौशल सैनिक रात को सो ही न पा रहे थे। बहुधा चमड़े के खोल पैरों में बांधे हुए सैकड़ों हाथियों के द्वारा वे कौशल छावनी में घुसकर सोते हुए सैनिकों को कुचलवा डालते थे। इन कठिनाइयों के कारण बंधुल को बहुत ही सावधान रहना पड़ता था। पर उसकी दूसरी कठिनाई ये थी कि राजधानी से ना तो उसे सूचना ही मिल रही थी, न सैन्य न रसद। रसद समाप्त हो रही थी, कोष खाली हो चुका था, सेना अस्त व्यस्त हो रही थी और बार बार पत्र भेजने पर भी राजा सहायता नहीं भेज रहा था। वास्तव में ये विदुडभ की अभिसंधि का परिणाम था। फिर भी बंधुल को चरों के द्वारा इस अभिसंधि का पता चल गया। उसने सीमापाल को सीमांत की गतिविधि देखने की व्यवस्था सौंपकर श्रावस्ती की ओर अत्यंत प्रच्छन्न भाव से प्रयाण किया। जिस दिन राजा का श्रावस्ती से निष्कासन हुआ, वो श्रावस्ती पहुंच गया था। उसने छद्म वेश में अपनी आंखों से राजा का निष्कासन देखा। वो निरुपाय था, सेना उसके हाथ में न थी। विदुडभ की संपूर्ण अभिसंधि वो जान गया। कारायण का प्रबंध बहुत जागृत था और वो प्रकट होकर अब कुछ नहीं कर सकता था। कारायण को उसने राजा के साथ जाते देखा था। उसने समझा कि अवश्य ही राजा को कहीं कैद कर दिया जाएगा। उसने सोचा इसका पता लगाना असंभव नहीं है, अतः उसने सबसे प्रथम विदुडभ को पकड़ने का विचार किया। ये साधारण कार्य न था, परंतु उसने सोचा कि यदि आज नहीं तो फिर कभी नहीं। कारायण की अनुपस्थिति से उसने पूरा लाभ उठाने का निश्चय किया। परंतु वो जैसा योद्धा था वैसा कूटनीतिज्ञ न था। फिर भी वो चुपचाप अपने गुप्त वास स्थान पर लौट आया। अपने चुने हुए मित्रों और सहायकों से उसने परामर्श किया और विदुडभ के अपहरण की एक योजना बनाई। राजकुमार विदुडभ इस गहरी कूटनीति में घुसकर भी अपनी रक्षा की ओर से सर्वथा असावधान थे। वो आचार्य अजित के इस कंबली से गुप्त परामर्श करके एक भृत्य के साथ निशंक राजपथ पर जा रहे थे। रात्रि का अंधकार राजपथ पर फैला हुआ था। दो चार जन इधर उधर आ जा रहे थे। बंधुल ने अनायास सुयोग पा लिया। राजपथ के एक विजन मोड़ पर बंधुल के एक ही हाथ ने अनुचरों को धराशायी कर दिया और उसी समय उसके तीक्ष्ण जनों ने अंगवस्त्र डालकर राजकुमार को विवश कर दिया। क्षण भर में ये कार्य हो गया। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। बंधुल के तीक्ष्ण जन राजकुमार को हाथ हाथ उठाकर ले भागे। परंतु राजा और राजकुमार दोनों ही का इस प्रकार जो अप्रकाश्य रूप से राजधानी से विलोप हुआ वो किसी भी मनुष्य ने नहीं जाना। अभिसंधि की अंगीभूत योजना के अनुसार आचार्य अजित के इस कंबली ने रत्नहोम के बाद 15 दिन का अवकाश मुख्य अनुष्ठान के लिए कर दिया था। साधारण होम और हविष्य याग चल रहे थे, परंतु उनमें यजमान के उपस्थित होने की आवश्यकता न थी। राजकुमार का हरण ऐसी गुप्त रीति से हुआ था कि आचार्य अजित को भी 8 पहर तक उसका पता नहीं लगा। परंतु जब मागध वैद्य जीवक ने आचार्य को सूचना दी कि राजकुमार कल रात से राजधानी में नहीं है, तो वे एक बारगी ही चिंताकुल हो उठे। वे अधैर्य से कारायण के सीमांत से लौटने की बाट देखने लगे। साथ ही उन्होंने शून्याध्यक्ष और राष्ट्रपाल को अत्यंत सावधानी से नगर रक्षण के लिए सचेत कर दिया। दिन के पिछले प्रहर में बंधुल मल्ल आचार्य अजित के पास गया, जाकर अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। उस समय आचार्य बहुत व्यस्त थे, यज्ञ से संबंधित विविध आदेश विविध जनों को दे रहे थे। बंधुल को देखकर आचार्य अत से इति तक विदुडभ के लुप्त हो जाने का सब रहस्य जान गए। भीत भी हुए, परंतु प्रकट में उन्होंने सेनापति का प्रहर्षित हो स्वागत करते हुए कहा, प्रसन्न तो रहा, सम्मोदित तो रहा सेनापति, सीमांत में सब भांति कुशल तो है। हाँ आचार्य, सब ठीक है। भला यहाँ यज्ञानुष्ठान तो ठीक ठीक चल रहा है? सब ठीक है बंधुल, मैंने सोचा मैं भी तो ये समारोह देखूं, इसी से आ गया। साधु साधु सेनापति, परंतु अभी तो रत्नहोम संपन्न हुआ है, अब दो पक्ष का अवकाश है। हविर्यज्ञ होता रहेगा, फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अभिषेक होगा, तब तक ठहरना सेनापति। अवश्य आचार्य, किंतु महाराज प्रसन्न तो हैं? बहुत थकित हैं बंधुल, यज्ञ समारोह का पूरा भार, फिर व्रत उपवास कर्मकांड, उन्हें क्या एक कार्य है? अब जो अवकाश मिला है भाई, रत्ती रत्ती काल गांधारी रानी के लिए राजा ने सुरक्षित रख लिया, दर्शन ही नहीं होते। परंतु हानि नहीं, अनुष्ठान निर्विघ्न चल रहे हैं, ये अच्छा है आचार्य। कुमार विदुडभ तो प्रसन्न है? इधर देखा नहीं है बंधुल, कदाचित वे भी किसी नववधू के फेर में न हो आचार्य, आप देखते हैं आयु है। हाँ हाँ बंधुल, आचार्य हंस पड़े, बंधुल भी हंसे, परंतु दोनों ने दोनों को जलती आंखों से देखा। आचार्य ने कहा, तो बंधुल सेनापति, देख रहे हैं यज्ञ व्यवस्था में बहुत व्यस्त हूँ, आहार विश्राम का समय भी नहीं मिलता। तो आचार्य विश्राम करें, मैं भी चला। बंधुल अभिवादन करके चल पड़ा। 79 कुटिल ब्राह्मण। अजित के इस कंबली ने जो कूटनीति का ताना बाना इतनी चतुराई से फैलाया था, उसमें युवराज विदुडभ के अकस्मात लुप्त हो जाने से बड़ा व्याघात पड़ गया। युवराज को मल्ल बंधुल ने ही उड़ाया है, इस संबंध में आचार्य को तनिक भी संदेह नहीं रहा। आचार्य ने बंधुल के जाते ही अस्वस्थता का ढोंग रचा और आसपास के लोगों को विदा कर एकांत में शैया पर पड़ रहे। शैया पर पड़कर उन्होंने एक शिष्य को बुलाकर कहा, सौम्य माधव, तू तनिक जाकर उस मागध वैद्य को बुला ला, मुझे उधर पीड़ा है। जीवक के आने पर आचार्य ने परामर्श किया। जीवक ने भी यही निश्चय किया कि कुमार को बंधुल ने ही उड़ाया है। दोनों इस बात पर सहमत थे कि कुमार का ये गोपन प्रकट न किया जाए। बंधुल इसे प्रकट न करेगा, ये निश्चय है। वो उनके प्राण भी संकट में नहीं डालेगा, क्योंकि उसका अभिप्राय केवल यही है कि सम्राट का पता लगाया जाए। परंतु अब विचारणीय बातें दो हैं, एक ये कि राजकुमार को छिपाया कहाँ गया है, दूसरा ये कि उनका उद्धार कैसे हो। जीवक और आचार्य दोनों ही निरुपाय थे। आचार्य ने कहा, जीवक, हमें सेनापति कारायण की प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु आचार्य, राजपुत्र का एक मित्र है। कौन है वो? वो एक मागध तरुण है। वो कहाँ है? ढूंढना होगा आचार्य, परंतु वो निश्चय ही श्रावस्ती में है। तब ढूंढो प्रिय जीवक, तब तक मैं अंतःपुर में क्या प्रतिक्रिया हो रही है एक बार देखूं। वैद्य को विदा करके आचार्य ने शिष्य से कहा, पुत्र, तू राजमहल में देवी कलिंग सेना के हर्म में जा और कंचुकी बाप भ्रव्य से कह कि आचार्य विष्णुपाद अमृत वेला में विशेष अनुष्ठान के लिए देवी के महल में आएंगे। देव पूजन की सब व्यवस्था करके देवी स्नाता होकर तैयार रहें, उन्हें उपवास भी करना होगा। शिष्य जो आज्ञा कह महालय की ओर चला। आचार्य बहुत सी बातों पर विचार करते हुए अपने शयन कक्ष में पड़े रहे। इसी समय कारायण ने व्यग्र भाव से आकर कहा, ये क्या सुन रहा हूं मैं आचार्य?
सेनापति, धैर्य से पूर्वापर संबंध पर विचार कर कर्तव्य का निर्णय करो।
परंतु मेरा कर्तव्य है कि सर्वप्रथम मल्ल बंधुल को बंदी करूं।
नहीं सेनापति, ऐसा करने से राजपुत्र का पता नहीं लगेगा।
तब क्या करना होगा?
दो कार्य, एक नगर की रक्षा का सुदृढ़ प्रबंध, दूसरे बंधुल की गतिविधि पर सतर्क दृष्टि।
तब ऐसा ही हो आचार्य, परंतु क्या हम कुमार की ओर से निश्चिंत बैठे रहें?
निश्चिंत क्यों सेनापति, कुमार कहाँ है पहले इसका पता लगाया जाए, पीछे उन्हें छुड़ाया जाए। बंधुल अवश्य ही अत्यंत गुप्त रूप से कुमार से मिलने जाएगा और उन्हें डरा धमकाकर महाराज का पता पूछेगा। ऐसी स्थिति में उसका अत्यंत छद्म वेश में बहुत सावधानी के साथ पीछा होना चाहिए।
ऐसा ही होगा आचार्य।
एक बात और, वत्स राज्य की सीमा पर जो सेना है उससे किसी भी दशा में बंधुल का संबंध संपर्क नहीं रहना चाहिए। इसके लिए पूरा सतर्क रहना होगा, उसका कोई चर सीमांत पर न पहुंचने पाए, उसे तुरंत बंदी कर लिया जाए और बंधुल को भी इसका पता नहीं लगना चाहिए।
समझ गया आचार्य, मैं ऐसी ही व्यवस्था करूंगा।
तो सेनापति तुम समुचित व्यवस्था करो।
एक बात और है।
वो क्या?
कुमार का मित्र एक मागध तरुण श्रावस्ती में है, उसे ढूंढने में वैद्य जीवक को सहायता देनी होगी।
अच्छा आचार्य। सेनापति अभिवादन कर वहां से चल दिया।
80 दुखद अंत। बंदी राज दंपति को लेकर सेनापति कारायण चलते ही गए। चलते ही चलते रात्रि का अंत हो गया। प्राचीन में उज्ज्वल आलोक की एक किरण फूटी। इसी समय कोसल की सीमा आ गई। सीमांत पर कारायण रुक गया। उसने अपने सैनिकों को एक ओर हटकर खड़े होने का आदेश दिया, फिर राज दंपति के निकट जाकर कहा, अब आप मुक्त हैं महाराज प्रसेनजीत, मैं राजाज्ञा का पालन कर चुका, अब आप स्वेच्छा से जहां जाना चाहें जा सकते हैं, ये आपका पाथेय है। उसने स्वर्ण से भरी एक छोटी सी थैली राजा के हाथ में थमा दी और बिना एक क्षण ठहरे और उत्तर की प्रतीक्षा किए ही वो तुरंत लौट चला। उस टूटती रात में एकांत शांत निर्जन वन में दोनों वृद्ध राज दंपति सर्वथा निरीह एकाकी खड़े रह गए। वो स्वर्ण दम से भरी सेनापति के द्वारा दी गई छोटी सी थैली न जाने कब उनके हाथ से खिसक कर भूमि पर जा गिरी। बहुत देर बाद राजा ने महिषी से कहा,
अब मल्लिका?
महाराज जिसका काल जाने।
तो मगध चलो प्रिय।
पराजित श्रेणिक बिंबिसार से पराभव पाने में क्या लाभ है महाराज?
श्रेणिक बिंबिसार मगधपति है, वो पूर्वी भारत का शीर्ष स्थानीय नरपति है। वो कर्तव्य अकर्तव्य को समझता है, उसका ईर्ष्या द्वेष जो कुछ भी हो कौशल के अधिपति के प्रति हो सकता है, प्रसेन के प्रति नहीं। प्रसेन अब एक निरीह पुरुष है, वो साधारण नागरिक भी नहीं है। वो राज्य भ्रष्ट, श्री भ्रष्ट, अधिकार भ्रष्ट, मित्र बंधु सेवक और संपत्ति से रहित आगत शरणागत जन है। श्रेणिक बिंबसार उसका स्वागत करेगा, उसे आश्रय देगा। फिर मैंने उसे कन्या दी थी, वो मेरा संबंधी जामाता है, वो उसकी मर्यादा का भी पालन करेगा।
तो देव जैसी आपकी इच्छा, मगध ही चलिए।
परंतु आपने तो पाथेय भी ग्रहण नहीं किया और सब आभरण हमने भृत्यों को दे दिए, मार्ग में पाथेय का क्या होगा?
क्या मैं सेवक का दान ग्रहण करूंगा?
तो महाराज मार्ग में हम खाएंगे क्या?
क्यों, क्या भिक्षा नहीं मिलेगी?
हंत, देव क्या भिक्षा ग्रहण करेंगे?
महाराज ने एकाएक कुछ स्मरण करके हंसते हुए कहा,
हो देवी पाथेय की व्यवस्था हो गई।
किस प्रकार महाराज?
मेरे दांत में हीरक कील है, उखाड़ लेने पर यथेष्ट होगा।
शांतम पापम, महाराज के दांत तोड़कर उससे हीरक कील निकालेंगे?
ये दांत अब किस काम आएंगे देवी मल्लिका? सब त्यागा तो दांतों का मोह क्यों? फिर ये सब विगलित होकर चल विचलित हो गए हैं, तोड़ने में अधिक कष्ट नहीं होगा।
मल्लिका कुछ न कहकर रोने लगी। राजा ने घोड़े से उतरते हुए कहा,
रोने से क्या लाभ मल्लिके, अश्व से उतर जाओ, कौशल राज्य का ये चिन्ह भी हमारे काम का नहीं।
प्रिय, तुम माली की बेटी हो, क्या पुष्पमाल नहीं गूंथ सकती?
अति बालकाल में गूंथी थी महाराज, गूंथ सकूंगी।
तो प्रिय, मैं उसे गृहस्थों के हाथ बेचाऊंगा, हमारा पाथेय चल जाएगा।
चलो प्रिय।
राजा ने रानी का हाथ पकड़ा और वे दोनों पांव प्यादे कठोर ऊबड़ खाबड़ जनशून्य मार्ग पर अपने अनभ्यस्त चरणों से बढ़ चले। दिन निकला, अस्त हुआ, रात हुई, प्रभात हुआ। ये दोनों निरीह वृद्ध नियति संतप्त राजदंपति चलते ही चले गए। मार्ग में लोगों ने देखा, दया करके भोजन देना चाहा, पर उन्होंने उस ओर नहीं देखा। बहुतों ने नाम धाम पूछा, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। बहुतों ने मान किया, अपमान किया, उपहास किया, उन्होंने उनकी ओर नहीं देखा। चलते चले गए। उनके पैर लहू और घावों से भर गए, पिंडलियां तन गईं, वस्त्र गंदे हो गए, वे झाड़ियों में उलझकर फट गए, मुंह सूख गया, भूख और प्यास से होठ जड़ हो गए। पर वे चलते ही चले गए, चलते ही चले गए। अंत में वे राजगृह के द्वार पर जा पहुंचे। उस समय दो दंड रात्रि व्यतीत हो चुकी थी, द्वार बंद थे। उन्होंने थकित वाणी से द्वारी से पूछा, मित्र द्वार खोल। दो वृद्ध निरीह भिक्षुक पुरुष स्त्री को अवज्ञा की दृष्टि से देखकर द्वारी ने कहा, क्या तुम्हारे आदेश से?
आदेश नहीं मित्र, परंतु हम दूर से आ रहे हैं।
तो उधर चैत्य में स्थान है, रात भर रहो, प्रातः द्वार खुलने पर नगर में जाना। राजा ने निराश दृष्टि से रानी की ओर देखा, उनमें खड़े होने और बोलने की शक्ति नहीं रही थी। रानी ने मंद स्वर से कहा,
ऐसा ही हो महाराज।
राजा ने मुद्रिका उंगली से निकालकर दौवारिक को देते हुए कहा, तो मित्र ये मुद्रिका अपने स्वामी मगध के सम्राट श्रेणिक बिंबिसार के लिए है, ये श्रेणिक बिंबिसार को दे। दौवारिक राजमुद्रा देख आश्चर्यचकित हो गया। उसने थोड़ा आदर प्रदर्शन कर कहा,
कुछ संदेश भी है भंते?
नहीं, कहकर राजदंपति चैत्य में आकर एक शिलाखंड पर पड़ रहे। शिला पर गिरते ही देवी मल्लिका के प्राण निकल गए। उन्हें गत प्राण देख महाराज प्रसेनजीत कुछ होठों में ही बड़बड़ाए और वे भी धीरे धीरे मल्लिका के शरीर पर गिर गए। उसी रात उनकी भी मृत्यु हो गई। मुद्रिका पाकर श्रेणिक बिंबसार अमात्य वर्ग सहित कौशलपति की अभ्यर्थना को जब वहां आया तो दोनों राजदंपति चिथड़े अंग पर लपेटे चिरनिद्रा में सो रहे थे। सम्राट ने राजविधान के साथ उनका संस्कार किया और सारे साम्राज्य में सूतक मनाया।